नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन और संविदा नियुक्तियों में भी महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के 403 पदों के लिए हुए उपचुनाव में 41% मतदान, कल होगी मतगणना। और देहरादून में खेली जा रही राष्ट्रीय जूनियर रग्बी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के फाइनल में बिहार ने ओडिशा को हराकर जीता स्वर्ण। अब समाचार विस्तार से। राज्य में विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन और संविदा नियुक्तियों में भी प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 151,589 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर नियुक्ति में भी प्रदेश की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि इस दौरान बिहार के बंटवारे के बाद उत्पन्न विवादित मामलों को दूर करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
जो बिहार के हित में रहा है और जो बंटवारे भी हुए हम लोग उसको पूर्ण रूपेण कैसे इसको जो विवाद है उसको भी समाप्त करने चाहिए और ये पूरा ईस्टर्न जोन कैसे विकसित हो। आपस में कई ऐसे रिवर हैं जिसके पानी का बंटवारा हम लोगों के बीच में है, उसकी भी चर्चा होगी। और जो संपत्ति हम दोनों के बीच में रहा है बिहार झारखंड, क्योंकि हम लोगों ने बिहार झारखंड क्योंकि एक ही पार्ट, तो वो पूरी तरह एक कमेटी बनाकर कैसे ऑर्गेनाइज किया सकता है, इस पर चर्चा।
प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी है। अब तक 4,53,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये संख्या कुल मतदाताओं का 57.48% है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार कल 83,12,000 से अधिक गणना प्रपत्र एकत्र किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि यदि यही गति बनी रही तो शेष प्रपत्र को निर्धारित समय सीमा 25 जुलाई से पहले ही एकत्र कर लिया जाएगा। आयोग ने अस्थायी रूप से माइग्रेटेड मतदाताओं से गणना प्रपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से या व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन माध्यम से अपने बीएलओ को भेजने की अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि एडीआर समेत कई संस्थाओं और राजद के सांसद मनोज झा ने एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के रिक्त 403 पदों के लिए कल हुए उपचुनाव में 41% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें महिलाओं ने 44% जबकि पुरुषों ने 37.67% मतदान किया। उपचुनाव के लिए मतों की गणना कल होगी। पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने C3 संस्था के साथ समझौता किया है। विभागीय निदेशक प्रशांत कुमार CH और C3 की कार्यकारी निदेशक डॉ. अपराजिता गोगोई ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर विभागीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस समझौते से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिव्यांग जनों को कौशल विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने पर लाभार्थी को आधार के लिए आवेदन करने का प्रमाण पत्र देना होगा। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार योजना के तहत नगद लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है। गौरतलब है कि मंत्रालय ने 2 जुलाई से आधार की अनिवार्यता लागू कर दी है। भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। रेलवे ने कहा है कि जारी वित्त वर्ष के अंत तक 50,000 से ज्यादा नौकरियों के प्रस्ताव दिए जाएंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने नवंबर 2024 से अब तक कुल 55,197 रिक्तियों की भर्ती को कवर करते हुए 7 अलग अलग अधिसूचनाओं में 1,86,00,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की हैं। बड़े पैमाने पर ली जा रही परीक्षाएं एक व्यापक भर्ती कैलेंडर का हिस्सा हैं और 2024 से अब तक 1,08,000 रिक्तियों की घोषणा की जा चुकी है। इस तरह बड़े पैमाने पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराना एक जटिल प्रक्रिया है। उम्मीदवारों के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी गई है। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार आधारित EKYC प्रमाणीकरण शुरू किया है। समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से राज्य के अधिकांश भागों में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया जी को छोड़कर अधिकतर जिलों में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। इधर देर रात मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज जमुई, औरंगाबाद, गया जी, रोहतास, नवादा और बांका समेत राज्य के दक्षिणी भागों में विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा नदी के जलस्तर में लगभग 20 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बढ़ते जलस्तर के कारण नदी के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों के पुनरुद्धार के लिए सभी हितधारकों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। श्री पाटिल नई दिल्ली में स्मार्ट नदी प्रबंधन पर चर्चा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान नदियों के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में नवाचारों को व्यापक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश में बालू की अवैध बिक्री और ढुलाई की शिकायत मिलने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना और अरवल जिले में जांच और कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि बालू के स्टॉकधारी सेकेंडरी लोडिंग केंद्रों पर भी जमा और बेचे जा रहे बालू की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में मानसून के दौरान 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू की निकासी पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत देश भर में 45,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री सड़क योजना एक निरंतर प्रक्रिया है। अब हम फेज 4 में जा रहे हैं। करीब 45,000 किलोमीटर की सड़कें हम बना रहे हैं 76,000 करोड़ रुपए में। तो अब उसका हमारा सर्वे का काम चल रहा है और जितनी जल्दी जो राज्य जल्दी से दिल्ली भेजेगा अपने सर्वे के कार्य को पूरा करके उसको हम लोग यथाशीघ्र उसको धन्यवाद करेंगे। बिहार सरकार के अधिकारियों से भी और आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी सर्वे करके भेजेंगे वो दिल्ली उतना जल्दी रिलीज करने का काम करेगा।
इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने पटना में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण समेत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। प्रदेश के 300 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने विभागीय बैठक में कहा कि 240 प्रखंडों में जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, साथ ही 60 भवनहीन प्रखंडों में अंचल भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए 276 प्रखंडों में मिट्टी की जांच और कंट्रोल मैपिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही जमीन उपलब्ध करा दी गई है। सचिव ने कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30,74,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में कल से 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि आरोग्य पर्व के नाम से आयोजित इस मेले में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान पात्र व्यक्ति आयुष्मान कार्ड और व्यय वंदना कार्ड भी बनवा सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के देहरादून में खेली जा रही जूनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में बिहार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने ओडिशा को 14-5 से मात दी। बिहार टीम की कप्तान अल्पना कुमारी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 10 अंक बनाए, जबकि सलोनी ने 4 अंक प्राप्त किए। बिहार टीम की इस सफलता पर रग्बी एसोसिएशन, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और अन्य खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महागठबंधन की ओर से आयोजित बिहार बंद की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राहुल गांधी के बयान के हवाले से लिखा है, बिहार में वोट छीनने की कोशिश। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक लगाया है, मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची हाईकोर्ट में याचिका मंजूर, चारा घोटाले में लालू की सजा बढ़ाने पर अब होगी सुनवाई। प्रभात खबर ने गोपाल खेमका हत्याकांड पर लिखा है, स्पीडी ट्रायल से आरोपियों को सजा दिलाएगी पुलिस। आज अखबार की सुर्खी है, आयुर्वेद कॉलेजों में 88 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में उगाई मेथी और मूंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन और संविदा नियुक्तियों में भी महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के 403 पदों के लिए हुए उपचुनाव में 41% मतदान, कल होगी मतगणना। और देहरादून में खेली जा रही राष्ट्रीय जूनियर रग्बी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के फाइनल में बिहार ने ओडिशा को हराकर जीता स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।